एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो लिखी तो गई थी करीब 100 साल पहले, लेकिन सच कहूं तो उसकी गूंज आज भी उतनी ही ताजा और जरूरी लगती है।
बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ की उस जबरदस्त किताब की और रूम ऑफ वन जोन, मतलब अपना एक कमरा। और ये सिर्फ किताब नहीं है, ये तो एक पूरा विचार है, एक बहस छेड़ती है ये।
हाँ, रचनात्मकता पर, आजादी पर और खास तौर पर महिलाओं की आवाज पर, उनकी रचनात्मकता पर।
सही कहा। और ये वो सवाल भी उठाती है जो आज भी यू नो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इतिहास में बड़ी महिला लेखक इतनी कम क्यों नजर आती हैं? क्या उनमें कोई कमी थी?
और वुल्फ का जवाब बड़ा साफ था, नहीं, कि कमी उनमें नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं असल दिक्कत वो दीवारें थीं, समाज की, आर्थिक हालात की, जो उनके चारों तरफ खड़ी कर दी गई थीं। आज हम इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, वुल्फ के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे।
तो पहले वर्जीनिया वुल्फ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 1882 से 1941 तक का उनका जीवन, 20वीं सदी के मॉडर्निस्ट साहित्य का मतलब एक बहुत बड़ा नाम।
हाँ, बहुत बड़ा नाम। वो लंदन का जो मशहूर इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप, उसका अहम हिस्सा थी। और उनकी किताबें मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, इन्होंने तो जैसे उपन्यास लिखने का तरीका ही बदल दिया।
और ये दिलचस्प बात है, जैसा आपने कहा कि उनकी अपनी जिंदगी ही इस किताब के सेंट्रल आइडिया का एक तरह से सबूत है। वो एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से थीं, लेकिन उन्हें वो फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिली जो उनके भाइयों को मिली। कैम्ब्रिज वगैरह जाने का मौका नहीं मिला।
हाँ, ये अपने आप में उस दौर की सच्चाई दिखाता है ना? उन्हें अपने पिता की जो बड़ी सी लाइब्रेरी थी उसी में पढ़ पढ़कर सीखना पड़ा, लेकिन फिर बाद में एक विरासत मिली उन्हें।
हाँ, वो मशहूर 500 पाउंड सालाना वाली।
वही, और उसी ने उन्हें वो आर्थिक आजादी दी जिसके बारे में वो इस किताब में लिखती हैं, मतलब वो पैसा और साथ में उनका अपना कमरा, उनका निजी स्पेस, इसी ने उन्हें वो हिम्मत और वो मौका दिया कि वो बिना किसी दबाव के अपनी शर्तों पर लिख सकें। तो उनका जो अनुभव था वो उन्हें इस टॉपिक पर बोलने का एक यूनिक अधिकार देता है।
अच्छा, तो ये किताब अपना एक कमरा, ये आई कैसे? आपने बताया कि ये उनके भाषणों पर आधारित है।
हाँ, असल में ये 1928 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो विमेन्स कॉलेज थे, न्यूहेम और गर्टन, वहाँ दो लेक्चर दिए थे। टॉपिक था महिलाएं और फिक्शन, तो ये किताब उसी का एक तरह से विस्तार है।
लेकिन ये कोई सूखा सा अकादमिक निबंध नहीं है जैसा आपने पहले कहा।
बिल्कुल नहीं। वुल्फ इसमें एक काल्पनिक कहानी सुनाने वाली का इस्तेमाल करती हैं। कभी वो अपना नाम मेरी बेटन बताती हैं, कभी मेरी सेटन, और वो हमें जैसे अपने साथ एक सोच की यात्रा पर ले जाती हैं।
तो इसमें क्या क्या है, उनके अपने अनुभव?
हाँ, उनके निजी अनुभव हैं, इतिहास का विश्लेषण है, लिटरेचर की परख है और कल्पना भी है। तो पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो, पर असल में ये बहुत गहरे सवाल उठा रही होती हैं।
और जो सबसे मशहूर बात इस किताब की, जो शायद सबने सुनी होगी, अगर किसी महिला को फिक्शन लिखना है तो उसके पास पैसा और अपना एक कमरा होना चाहिए। सीधी सी बात लगती है, पर उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी।
जबरदस्त, बहुत क्रांतिकारी। और यहाँ कमरे का मतलब सिर्फ यू नो चार दीवारें नहीं है।
हाँ, वो सिंबॉलिक है।
बिल्कुल, वो प्रतीक है दिमागी आजादी का, कि आप बिना रोक टोक सोच सकें, आपका अपना एक कोना हो। और पैसा उस समय के हिसाब से 500 पाउंड साल का, वो उस आजादी का प्रैक्टिकल बेस है,
ताकि रोजमर्रा की चिंताएं ना सताएं या सिर्फ पैसे के लिए लिखने का दबाव ना हो।
सही, ताकि वो अपनी कला के साथ, अपने सच के साथ ईमानदार रह सकें। तो वुल्फ का सवाल वही था, इतिहास में महान महिला लेखक क्यों नहीं? और उनका जवाब था, टैलेंट की कमी नहीं, सिस्टम की प्रॉब्लम थी।
शिक्षा नहीं मिली, आर्थिक आजादी नहीं थी, समाज कुछ और ही उम्मीदें रखता था, ये सब मिलकर जैसे एक जाल बुन देते थे।
बिल्कुल, इसीलिए ये किताब सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, ये फेमिनिस्ट सोच का एक, आप कह सकते हैं, फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ये दिखाती है कि टैलेंट को पनपने के लिए माहौल चाहिए, आजादी चाहिए, सपोर्ट चाहिए।
और ये सब ऐतिहासिक रूप से पुरुषों को ज्यादा मिला।
हाँ, और महिलाओं को इससे दूर रखा गया। तो ये सिर्फ गुजरे कल का विश्लेषण नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक तरह की पुकार भी है।
चलिए इस यात्रा में थोड़ा और अंदर चलते हैं। वो हमें काल्पनिक यूनिवर्सिटी ले जाती हैं, ऑक्सब्रिज।
हाँ, ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज को मिलाकर। वहाँ उनकी जो काल्पनिक नरेटर है उसे बड़े अजीब अनुभव होते हैं, छोटी छोटी बातें पर चुभने वाली।
जैसे?
जैसे लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि वो महिला है. लॉन की घास पर चलने से मना कर दिया जाता है. वो सिर्फ प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स के लिए है. मतलब ये छोटी बातें दिखाती हैं कि पूरा सिस्टम कैसा था.
और वो खाने वाला किस्सा ही बड़ा मशहूर है, पुरुषों के कॉलेज का शानदार खाना और महिलाओं के कॉलेज का सादा खाना.
हाँ, पुरुषों के कॉलेज में बढ़िया लंच, वाइन, अच्छी बातचीत, और दूसरी तरफ महिलाओं के कॉलेज फन एम में बिल्कुल सादा बेमजा खाना. वुल्फ इन बहुत ही रोजमर्रा की भौतिक चीजों से जोड़ती हैं कि कैसे आराम, पैसा, अच्छा खाना, ये सब आपकी सोच पर, आपकी क्रिएटिविटी पर सीधा असर डालते हैं.
ये बड़े सिस्टमिक इश्यूज के छोटे लेकिन बहुत ठोस उदाहरण हैं.
बिल्कुल. फिर वो नरेटर जाती है ब्रिटिश म्यूजियम ये पता करने कि महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है, सच क्या है.
और उन्हें क्या मिलता है वहाँ?
उन्हें पता चलता है कि महिलाओं पर लिखी लगभग सारी किताबें पुरुषों ने लिखी हैं, और उनमें अक्सर या तो गुस्सा भरा है, या कोई पूर्वाग्रह है, या फिर महिलाओं को कमतर साबित करने की कोशिश.
यहाँ वुल्फ एक बड़ा दिलचस्प साइकोलॉजिकल सवाल उठाती है ना.
हाँ, कि पुरुषों को इतना गुस्सा क्यों आता है महिलाओं के बारे में लिखते हुए.
हाँ,
वो अंदाजा लगाती हैं कि शायद ये उनकी अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रखने की एक मतलब अवचेतन जरूरत है. वो ये भी देखती हैं कि कैसे कानूनी तौर पर महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए ताकि वो आर्थिक रूप से निर्भर रहें. तो सार ये है कि इतिहास और ज्ञान वो भी मर्दों के नजरिए से ही लिखे गए हैं.
तो महिलाओं की सच्चाई उन किताबों में कैसे मिलेगी जो उनके उत्पीड़कों ने लिखी है? ये उनका पॉइंट था.
सही. और इसी बात को समझाने के लिए वो एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट करती हैं, एक कल्पना जो शायद इस किताब का सबसे यादगार हिस्सा है.
जुडिथ शेक्सपियर वाली कल्पना?
हाँ, वही. वो कहती हैं, सोचिए अगर विलियम शेक्सपियर की एक बहन होती जुडिथ, और मान लीजिए वो उतनी ही टैलेंटेड होती जितना विलियम था, तो उसकी कहानी क्या होती.
और वो जो तस्वीर खींचती है वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है.
हाँ, दिल दुखाने वाली है. जुडिथ को स्कूल नहीं भेजा जाता. वो छुप छुप के पढ़ती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, घर के काम करने पड़ते हैं, भाई पढ़ रहा है, वो काम कर रही है.
जबरदस्ती शादी तय होती है तो भाग जाती है.
हाँ, लंदन भाग जाती है. थिएटर में अपना टैलेंट दिखाना चाहती है, लेकिन लंदन में क्या होता है, थिएटर की दुनिया तो पूरी मर्दों की थी. उसे या तो मजाक झेलना पड़ता है या शोषण,
क्योंकि औरतें स्टेज पर आ नहीं सकती थी उस समय.
बिल्कुल. कहानी में फिर एक थिएटर मैनेजर उस पर दया करता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और आखिर में पूरी तरह नाउमीद होकर अपनी सारी प्रतिभा के साथ वो आत्महत्या कर लेती है.
ये कहानी इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि दिखाती है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उसे माहौल चाहिए, मौका चाहिए, समाज का साथ चाहिए.
सही कहा. जुडिथ उन लाखों करोड़ों गुमनाम औरतों का प्रतीक बन जाती है जिनकी क्षमताएं समाज की बेड़ियों में दबकर रह गईं.
लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी ने लिखा ही नहीं. वुल्फ उन शुरुआती लेखिकाओं की भी बात करती हैं जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद लिखा.
हाँ, वो एफ्रा बीन का जिक्र करती हैं, 17वीं सदी में शायद पहली अंग्रेज महिला जिसने लिखकर पैसे कमाए. वुल्फ इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हैं कि हाँ, ये हो सकता है.
फिर वो 19वीं सदी की बड़ी लेखिकाओं की बात करती हैं, जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे बहने, जॉर्ज एलियट.
हाँ, वो उनकी प्रतिभा की तारीफ करती हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती हैं कि कैसे उनकी परिस्थितियाँ उनके लेखन पर असर डालती थीं. जैसे जेन ऑस्टन, उन्हें घर के कॉमन ड्राइंग रूम में सबके बीच डिस्टर्बेंस के साथ लिखना पड़ता था.
शायद इसीलिए उनके उपन्यास ज्यादातर घरों के अंदर ही सेट होते हैं.
शायद वुल्फ का यही इशारा है. ब्रॉन्टे बहनों के लेखन में वो गुस्सा, वो विद्रोह साफ दिखता है जो उनकी अपनी परिस्थितियों से उपजा था.
जॉर्ज एलियट को तो मर्द का नाम लेना पड़ा
ताकि लोग उन्हें गंभीरता से लें.
हाँ.
तो वुल्फ कह रही हैं कि इन महिलाओं का लेखन बेशक कमाल का है, उनकी प्रतिभा दिखाता है, लेकिन उसमें वो सीमाएं भी दिखती हैं, वो दबा हुआ गुस्सा भी दिखता है जो उन पर थोपा गया था. उनके अनुभव सीमित थे तो उनका लेखन भी अक्सर उसी दायरे में रहा.
फिर वुल्फ अपने समय पर आती हैं, 1920s की लेखिकाओं पर. वो एक काल्पनिक नॉवल का जिक्र करती हैं, मैरी कॉरमाइकल का.
हाँ, लाइफ्स एडवेंचर. और उसमें उन्हें कुछ उम्मीद दिखती है कि अब महिलाएं सिर्फ पुरुषों के रिलेशन में नहीं बल्कि आपस में महिलाओं के बारे में लिख रही हैं.
और वहीं वो मशहूर वाक्य आता है.
हाँ, क्लोई को ओलिविया पसंद थी.
क्लोई लाइक्ड ओलिविया.
वुल्फ कहती हैं ये एक तरह की क्रांति है. साहित्य में शायद पहली बार दो महिलाओं का आपसी रिश्ता दिखाया जा रहा था जो पुरुषों से बिल्कुल आजाद था.
कि महिलाएं सिर्फ किसी की माँ, बेटी, पत्नी नहीं है, उनके अपने रिश्ते भी हैं.
बिल्कुल. लेकिन वुल्फ ये भी नोट करती हैं कि महिला लेखिकाओं की अपनी स्टाइल, अपनी आवाज अभी पूरी तरह बनी नहीं है. वो पुरुषों के बनाए लिखने के तरीके को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि शायद वो उनके अनुभवों को फिट नहीं बैठता, पर अपनी नई भाषा, अपना नया तरीका अभी ढूंढ रही हैं।
तो एक तरफ उम्मीद है पर चुनौती भी है, अपनी असली आवाज कैसे मिले।
सही। और फिर आखिर में वुल्फ वो उभयलिंगी मन, एंड्रोजिनस माइंड वाला विचार रखते हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है शायद।
हाँ, वो क्या है असल में?
उनका मानना है कि सबसे महान क्रिएटिव माइंड वो होता है जो जेंडर की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, जिसमें तथाकथित मर्दाना गुण जैसे लॉजिक और जनाना गुण जैसे इमोशन, इंट्यूशन, दोनों का बैलेंस हो, दोनों मिले हुए हों।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो शेक्सपियर को मानती हैं।
हाँ, उनका तर्क है कि अगर कोई सिर्फ मर्द की तरह सोचेगा और लिखेगा तो उसमें शायद अहंकार या गुस्सा दिखेगा, और अगर कोई सिर्फ औरत की तरह उस समय के हिसाब से शायद सिर्फ शिकायत या विक्टिमहुड सोचेगा तो वो भी आर्ट को लिमिट कर देगा।
तो सच्ची कला के लिए इन दोनों से ऊपर उठना जरूरी है।
हाँ, वुल्फ के हिसाब से सच्ची महान कला एक ऐसी चेतना से आती है जो इन जेंडर के खांचों से आजाद हो, शांत हो, जिसमें कोई बायस ना हो, जिसे अपने जेंडर को डिफेंड करने की जरूरत ना लगे। वो इसे तापदीप्त, इनकैंडेसेंट मन कहती हैं, जैसे बिना धुएं के जलती हुई लौ। और फिर वो युवा महिलाओं से कहती हैं, अपना कमरा और पैसा हासिल करो ताकि भविष्य की जूडिथ शेक्सपियर जी सके, लिख सके।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत के मुख्य संदेशों को देखें तो पहला तो साफ है, आर्थिक स्वतंत्रता। ये रचनात्मक आजादी की पहली शर्त है। वो कमरा और पैसा वो सिर्फ चीजें नहीं, वो आजादी के प्रतीक हैं।
बिल्कुल। दूसरा कि उत्पीड़न सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत होता है। वुल्फ सिस्टम पर उंगली उठाती हैं, यूनिवर्सिटी, कानून, समाज, जो मिलकर महिलाओं को रोकते हैं। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की बात नहीं है।
तीसरा, इतिहास से महिलाओं का गायब होना और अपनी एक साहित्यिक परंपरा बनाने की जरूरत। वुल्फ की वो लाइन, इतिहास में ज्यादातर गुमनाम लोग औरतें थीं, ये बहुत पावरफुल है।
हाँ। चौथा, गुस्सा रचनात्मकता को रोक सकता है, चाहे वो पुरुषों का गुस्सा हो या शुरुआती महिला लेखकों का अपनी स्थिति पर जायज गुस्सा। वुल्फ एक शांत, गहरी सच्चाई की तलाश में है।
और पांचवा, वो उभयलिंगी मन का आदर्श कि महान कला जेंडर से परे जाकर दोनों दृष्टिकोणों को मिलाने से आती है।
और अगर हम आज देखें, खासकर भारत में, तो ये बातें आज भी कितनी रेलेवेंट लगती हैं, आज भी कितनी महिलाओं के लिए अपना पैशन फॉलो करने के लिए, चाहे वो लिखना हो या कुछ और, वो जरूरी वक्त, वो जगह, वो आर्थिक सपोर्ट जुटाना कितना मुश्किल होता है।
हाँ, घर की जिम्मेदारियां, समाज की उम्मीदें, ये सब आज भी फैक्टर हैं। तो महिला रोल मॉडल और उनकी कहानियां और भी जरूरी हो जाती हैं।
यकीनन। और इस किताब की कुछ लाइनें तो सच में दिमाग में बैठ जाती हैं। पहली तो वही असास वाली, एक महिला के पास अगर उसे फिक्शन लिखना है तो पैसा और अपने एक कमरा होना चाहिए। कितनी सीधी प्रैक्टिकल बात।
हाँ, और दूसरी जो हमेशा याद रहती है, इतिहास में अधिकतर अनाम एक महिला थी। उन लाखों गुमनाम प्रतिभाओं को जैसे श्रद्धांजलि देती है ये लाइन।
फिर वो कनेक्शन, बौद्धिक स्वतंत्रता भौतिक चीजों पर निर्भर करती है, कविता बौद्धिक स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। ये इस ख्याल को तोड़ती है कि महान आर्टिस्ट भूखे पेट ही बनता है। वुल्फ कहती है, नहीं, दिमाग को सुकून चाहिए।
और वो वाक्य जो उस समय के लिए इतना रेडिकल था, क्लोई ओलिविया को पसंद करती थी, ये साहित्य में महिलाओं की अपनी दुनिया, उनके आपसी रिश्तों को दिखाने की एक अहम शुरुआत थी।
बिल्कुल। और आखिर में उभयलिंगी मन पर, किसी भी लेखक के लिए अपने लिंग के बारे में सोचना घातक है। व्यक्ति को स्त्री पुरुषोचित या पुरुषो स्त्रीयोचित होना चाहिए, मतलब अपनी पहचान से ऊपर उठकर एक इंसान के तौर पर देखो।
और यह आइडिया सिर्फ किताबों या साहित्य तक ही सीमित नहीं है ना, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ता है।
हाँ, बिल्कुल। पर्सनल लेवल पर यह हमें याद दिलाता है कि आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना और अपने लिए पर्सनल स्पेस, चाहे वो टाइम हो या जगह बनाना, कितना जरूरी है, तभी हम अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं।
और काम की जगह पर या पढ़ाई में, यह हमें उन सिस्टमिक बैरियर्स को, उन छोटी छोटी रुकावटों को पहचानने में मदद करता है जो शायद किसी एक ग्रुप को पीछे रखती हों। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और मेंटरशिप की जरूरत पर जोर देता है।
सामाजिक स्तर पर यह हमें सिखाता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं इतिहास, मीडिया, उसे क्रिटिकली देखें, सवाल पूछें, किसकी कहानी है ये, किसकी आवाज नहीं है, कोई एजेंडा तो नहीं।
और क्रिएटिव लोगों के लिए ये गुस्से या कड़वाहट से आगे जाकर ज्यादा गहराई और ईमानदारी से अपनी बात कहने की प्रेरणा है।
और हाँ, पेरेंटिंग में या बच्चों को पढ़ाते हुए ये सीधी सी बात याद दिलाता है, हर बच्चे के टैलेंट को मौका दो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जूडिथ शेक्सपियर की कहानी यही तो है।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत में सबसे स्ट्राइकिंग बात यही रही कि कैसे वुल्फ ने बहुत ही मामूली भौतिक चीजों को, खाना, कमरा, पैसा, इतनी बड़ी और गहरी चीजों से, जैसे कि सोचने की आजादी, क्रिएटिविटी से जोड़ दिया। ये वाकई नजरिए को बदलता है।
और मेरे लिए अपने कमरे का आइडिया आज के इस हमेशा कनेक्टेड दुनिया में, जहां हर वक्त फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सिर्फ फिजिकल जगह नहीं, ये वो मानसिक शांति है, वो फोकस करने का वक्त है, वो बाउंड्रीज हैं जो हमें अपने लिए बनानी पड़ती हैं। अपना वो मेंटल कमरा बनाना बहुत जरूरी है। और हाँ, वो उभयलिंगी मन वाला विचार चुनौतीपूर्ण है, पर बहुत इंस्पायरिंग भी, एक ज्यादा बैलेंस्ड सोच के लिए।
वुल्फ ने करीब 100 साल पहले कहा था कि क्रिएटिविटी के लिए पैसा और कमरा चाहिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में सोचें, जहां शायद फिजिकल कमरा उतना मायने न रखता हो या पैसे कमाने के तरीके बदल गए हों, तो आज वो कौन सी नई जगह हैं या आर्थिक स्वतंत्रता के कौन से नए रूप हैं जिनकी हमें जरूरत है, ताकि हम सब, स्त्री और पुरुष, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। ये सवाल वुल्फ की किताब आज भी हमारे लिए छोड़ जाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।